समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियां होंगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओ, आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो अथर, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट अतहर सईद। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 5,000 करोड़ रुपीज एट जोधपुर इन राजस्थान। सेज दिस प्रोजेक्ट्स विल स्ट्रेंथन रीजनल इकोनॉमी, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गिव न्यू एनर्जी टू टूरिज्म सेक्टर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स।
चीन में एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 2, स्क्वाश में 1 स्वर्ण और 1 रजत और महिलाओं की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 85 हुई।
एंड इन क्रिकेट, मेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप किक्स ऑफ इन गुजरात, ओपनिंग मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड अंडरवे इन अहमदाबाद। And now, Arthur, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about ICC World Cup 2023 and the National Dolphin Day. Well, to begin with the ICC World Cup, well, Arthur, the quadrennial tournament which started today and runs through mid-November is expected to draw large numbers of visiting fans domestically and internationally. With the matches played across 10 cities, it will mostly benefit the travel as well as the hospitality sectors. So let's talk about the format of this World Cup. This World Cup will follow a similar format as the 2019 edition, starting with a round-robin stage followed by knockouts. In the round-robin stage, all 10 teams will compete against each other once. A victory earns the winning side 2 points, while no result or draw will mean the sides each win a single point. At the end of the first stage, the highest scoring 4 teams qualify for the semi-finals, and the winners of each semi-final advance to the final to determine the champion. So this, Athar, is the format of the World Cup 2023.
बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक। क्रिकेट के महाकुंभ का बिगुल बज चुका है। 10 सेनाओं के 150 महारथी पूरी तरह से तैयार हैं। देश के 10 शहरों में करीब 1.5 माह तक विश्व चैंपियन बनने के लिए जंग होगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया जहां 12 साल बाद विश्व कप ट्रॉफी को चूमने को बेताब होगी, तो इंग्लैंड अपने खिताब को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विश्व कप को उठाना चाहेगा। और जहां मैच होंगे उनका भी हम जिक्र कर दें, कहां कहां मैच होंगे। अहमदाबाद में मैच होंगे, चेन्नई, धर्मशाला, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में मैचेस खेले जाएंगे। यानी 10 शहरों में होंगे मुकाबले, लेकिन भारतीय टीम 9 शहरों में अपने मैचेस खेलेगी। और इस साल जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं उनका नाम भी हम बता दें। ये देश हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। ये देश जो हैं विश्व कप हिस्सा ले रहे हैं।
एंड द फर्स्ट एवर आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप अथर टुक प्लेस एट लॉर्ड्स इन इंग्लैंड इन 1975 एंड द 2023 मार्क्स द 13th एडिशन ऑफ दिस एक्साइटिंग टूर्नामेंट। एंड इंडिया हैज होस्टेड द टूर्नामेंट 3 times प्रीवियसली, बट 2023 विल बी द फर्स्ट टाइम इट विल बी द सोल होस्ट। एंड इंग्लैंड हैज वन लाइक यू सेड इन 2019, सो दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस आफ्टर विनिंग ऑन होम सॉयल ड्यूरिंग अ थ्रिलिंग फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री दैट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट वर्ल्ड कप टाइटल्स, दे हैव वन 5 चैंपियनशिप सो फार। एंड इंडिया इज होस्टिंग द 13th एडिशन ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 12 ईयर्स ऑन होम सॉयल फ्रॉम टुडे। द मेगा स्पोर्टिंग इवेंट विल सी 48 मैचेस स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 45 डेज। As cricket is the most popular sport in India with a significant viewer base, Consumption and media activity will be at its peak while the country is rooting for a win in home venue.
Bilkul, Jalandhar city is known as the main hub of sports goods manufacturing, and as per estimate, Jalandhar contributes about 60% share in the country's total sports goods manufacturing. Sports goods from Jalandhar are not only meeting the domestic needs of the country, but are also being exported to many other countries, including Britain, Australia, US, and European countries. More than 300 kinds of sports goods are manufactured in the sports industry of this city. The sports industry of Jalandhar is getting the benefit of the Cricket World Cup being held in the country, which is evident from the upsurge in sales of sports goods during the last few months. The demands for cricket bats and other goods have increased many folds, and it has brought cheers to the face of people associated with the sports industry. Shishu Sharma Shantal, Akashvani News, Jalandhar.
क्रिकेट का महाकुंभ जैसे कि हमने पहले चर्चा की ये शुरू हो गया है और आज जो पहला मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हो रहा है और उसमें ताजा स्थिति यह है कि इंग्लैंड जो है पहले बल्लेबाजी कर रहा है 208 रन बना लिए हैं 5 विकेट खोने के बाद 36 ओवर में। इसके अलावा कुछ रोचक मेरे पास तथ्य हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वो भी अपने सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। तो अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद 18 साल 275 दिन के हैं, ये टूर्नामेंट के सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। वहीं अगर सबसे उम्रदराज की बात करें तो नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर वेस्ली बारिसी 39 वर्ष 155 दिन उनकी उम्र है, ये सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर होंगे। एक और बात बताता हूं कि 2007 के बाद टीम इंडिया हर बार सेमीफाइनल में पहुंची है अभिषेक, और 46 दिन तक ये महाकुंभ चलेगा जिसमें 48 मैच खेले जाएंगे। 2011 के बाद से मेजबान टीम ही बन रही है विश्व चैंपियन, तो इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत की उम्मीदों का चिराग ज्यादा रोशन होंगे। इसके अलावा एक और चीज है, अगर हम इनामी राशि की बात करें तो 33 करोड़ के नकद इनाम के साथ मिलेगी विजेता को ट्रॉफी। और भारत की बात करें तो भारत के सभी मैच दोपहर 12 बजे से खेले जाएंगे। 8 अक्टूबर को पहला मैच होगा भारत का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी चेन्नई में भारतीय टीम। उसके बाद 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान से मुकाबला होगा भारत का, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से अहमदाबाद में मुकाबला होगा, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश से मुकाबला होगा भारत का पुणे में, और इसके अलावा धर्मशाला में भारत खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ, और 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टीम इंडिया खेलेगी। इसके अलावा नवंबर 2 की बात करें तो श्रीलंका से हमारा मुकाबला होगा मुंबई में, और 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ कोलकाता में हमारा मैच होगा, और इसके अलावा 12 नवंबर को नीदरलैंड से हम भिड़ेंगे बेंगलुरु में। तो ये था अब तक का जो शेड्यूल है भारतीय टीम का महाकुंभ, इस वर्ल्ड कप महाकुंभ के।
यस, एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज अ नेशनल डॉल्फिन्स डे। वेल, डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स एंड अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ टूटेड व्हेल्स दैट इंक्लूड्स ऑर्कास एंड पायलट व्हेल्स। They are found worldwide mostly in shallow seas of the continental shelves and are carnivores mostly eating fish and squid. And today is National Dolphin Day, which is celebrated every year to create awareness about conservation of the national aquatic animal which inhabits the Ganges, Brahmaputra, Meghna and the Karnaphuli-Sangu river systems of Nepal, India and Bangladesh. From demands of wildlife experts, animal lovers and environment expert, the National Board for Wildlife has accorded the 5th of October as a National Dolphins Day in 2022.
बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक, जो आज का दिन है यानी 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन पशुओं का, इन जलीय जलचरों का किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उनका संरक्षण करने के लिए हमारा रोल क्या है, तो ये रोल हमें बहुत ज्यादा निभाना होगा। क्योंकि डॉल्फिन का जहां तक प्रश्न है, डॉल्फिन को हमने आजकल मनोरंजन का केंद्र ज्यादा बना दिया है, वो करतब दिखाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जहां उनके संरक्षण का प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है। और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर डॉल्फिन के संरक्षण पर हमें काम करना होगा। बिहार ने अपनी गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु जो है घोषित किया है। बिहार में गंगा डॉल्फिन की मुख्य जो उपस्थिति है, जो हमें मिलती है, वो गंगा, गंडक और कोसी में ये पाई जाती हैं, और इसके अलावा महानंदा नदी में भी इनकी संख्या है, तो इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है।
यस, एंड लेट्स ऑल्सो नाउ टॉक अबाउट सम फन फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स आर कार्निवोर्स। डॉल्फिन्स ओनली स्लीप विद हाफ ऑफ द ब्रेन। दे लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। Some whales are actually dolphins. A dolphin can swim more than 20 miles per hour. They do not have hair. A group of dolphins is called a pod. The size of dolphins varies. Dolphins can hold their breath much longer than humans. And there are 43 different species of dolphins. So these, Arthur, are some fun facts about dolphins. And former professor of zoology in Patna University, Dr. R.K. Sinha, which got the sobriquet of the Dolphin Man of India, has done several research on the Gangetic dolphins, which also is called the Sons in Bihar. And according to Dr. Sinha, as a tiger represents the health of the forest, just as a snow leopard represents the health of the mountainous regions and the cheetah the health of grasslands, the presence of dolphin in a river system signals its good health and biodiversity.
प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति के जो हमें देन है वो कितनी सुंदर है, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं जो लुप्त प्राय हो गए हैं, कुछ दुर्लभ हो गए हैं, कुछ नजर नहीं आते हैं, कुछ नजर नहीं आने के कगार पर रहे हैं। तो यहां पर अभिषेक, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनके संरक्षण पर हमें काम करना चाहिए, इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे जलचर हों। डॉल्फिन का जहां तक प्रश्न है, डॉल्फिन कितनी सुंदर नजर आती है, कितनी अच्छी लगती है और कितने अच्छे उसके कर्तव्य होते हैं। मैं कहता हूं कि जलचरों में सबसे ज्यादा बुद्धि डॉल्फिन के पास होती है, है ना?
Yes, and the former member of Bihar State Board for Wildlife, Sudhan Sahai, has tremendously worked for the conservation of the Gangetic River Dolphin in Araria area and tributaries of Mahananda River like Panar. And talking to Akashwani News, Mr. Sahai says we have to hand over the baton for awareness to younger generation and it should be made a part of the curriculum in schools and colleges.
अवेयरनेस इज स्कूल कॉलेज, उसमें सिलेबस में उसको इंक्लूड किया जाए कि डॉल्फिन को तो अभी समझता है अभी अवेयरनेस की कमी है कि उसको कैसे बचाया जाए, तो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाए ताकि कमिंग जेनरेशन इसको आगे बढ़ाए। और ये डॉल्फिन का जो नंबर है अभी तो फॉर्चुनेटली बिहार में बहुत अच्छा नंबर है, टॉप है इंडिया का, जितना टोटल पॉपुलेशन है उसका हाफ बिहार में है। एजुकेशन का जो सिस्टम है हम लोग में, उसके सिलेबस में बच्चों को ही शुरू से अवेयर किया जाए।
And it is estimated that the total population is around 2,000 and they are recognized as highly endangered in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, that is the dolphins. The Zoological Survey of India is organizing several programs on the day, so happy National Dolphins Day.
बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर हमें सबको ये प्रण लेना चाहिए कि इसकी हम रक्षा करेंगे और इसकी संख्या को बढ़ाने के जितने प्रयास हो सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से, वो प्रयास हमें करने होंगे। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जानने का और उनसे ये जानने का कि क्या है उनके पास खास समाचार आज।
Second phase of Meri Mati Mera Desh Abhiyan with the State Regional Director, Nehru Yuva Kendra Sangathan, Uttar Pradesh, and our news editor Om Avasthi from Akashwani Lucknow has taken an interview of Mr. Srikant Pandey, Nehru Yuva Kendra, Regional Director, UP. Let's listen in.
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश में क्या-क्या कार्यक्रम किए गए हैं।
तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रथम चरण थे वो 9 अगस्त से 30 अगस्त तक हुए। उस समय जो हमारा कार्यक्रम का मेन लक्ष्य था कि हमारे जो ग्राम पंचायत हैं वो हमारी इकाई थे और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं जिसमें 57,817 ग्राम पंचायत है। इन पंचायतों में अमृत वाटिका का निर्माण करना था, वीरों एवं शहीद परिवारों का बंधन करना था और पंच प्रण जो प्रधानमंत्री जी का है उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में मिलाकर 38,719 ग्राम पंचायतों में अमृत वाटिका और 75 पेड़ लगाए गए। उसमें विशेष रूप से जहां हमारे अमृत सरोवर थे वो 29,456 वहां अमृत वाटिका का निर्माण किया गया और करीब सभी ग्राम पंचायतों में पंच प्रण का शपथ सबको दिलवाया गया और वीरों का हर गांव में अभिनंदन भी किया गया।
अभी ये कार्यक्रम अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है, तो दूसरे चरण में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
मेरा माटी मेरे देश का द्वितीय जो कार्यक्रम है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले में हम लोगों ने पंचायत को यूनिट माना था, अभी हम उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को 1,06,000 गांवों को हमने यूनिट माना है, हर जगह कार्यक्रम में होना है और एक लंबा कार्यक्रम है। इसके हमारे चरण हैं, पहला है कि ग्रामीण स्तर पर जो हमें 1 से 30 तक करना है कार्यक्रम, जिसमें विशेष रूप से अब हर घरों से हमको मिट्टी लेना है या नहीं तो चावल लेना है और हर घरों में एक कलश जाएगा और गाजे बाजे के साथ हर गांव गांव में एक उत्सव मनाते हुए हर परिवार के पास में उस गांव के जाने का ये पहला चरण है और इसीलिए एक लंबा बनाया गया है कि एक महीना तक ये कार्यक्रम चले और हर घरों से हम उस मिट्टी को और चावल को जमा करके उस गांव में एक जगह सम्मानित जगह उस कलश को रखें। उसके बाद में जो ब्लॉक लेवल का हमारा कार्यक्रम है वो 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें हम जो भी प्रत्येक गाँव में से जो कलश में जमा किए हैं उसको हमको ब्लॉक मुख्यालय में लाना है। फिर जब हमारा 13 तक का ये कार्यक्रम चल जाएगा तो फिर हमें अपने जिला मुख्यालय पर जनपदों में जो कार्यक्रम है वो 14-10 से लेकर 25 तक हम जमा करेंगे और वहाँ एक उत्सव मनाएंगे ब्लॉक लेवल पर और जिले लेवल पर, जिसमें सांस्कृतिक दल भी होंगे, फिर वहाँ पंचप्रण होगा, वहाँ वीरों का सम्मान होगा और फिर हम लोग स्टेट में जो विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी महोदय का जो सभी जिला अधिकारियों को निर्देश है और पूरी मिशनरी है और जिसमें विशेष रूप से युवा कार्यक्रम खेल विभाग और सांस्कृतिक जो कल्चर विभाग है ये दो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अदा करेंगे और 27 तारीख को राज्य स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम होगा जो झूलेलाल पार्क में अभी तक निश्चित है और वहाँ से जितने भी हमारे यहाँ 825 ब्लॉक हैं वहाँ से हर ब्लॉक से 4-4 हमारे युवा आएंगे और हर ब्लॉक का कलश एक बड़े भव्य समारोह करके और एक विशेष ट्रेन से इसको दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ 28 और 29 को 6000 हमारे उत्तर प्रदेश के युवा उन कलश के साथ विशेष ट्रेन के साथ जाएंगे और उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कर्तव्य पथ पर होगा और 30 तारीख को पूरे देश के ब्लॉकों से इसी तरह का आएगा और कर्तव्य पथ पर इन मिट्टी जो हमारे मिले रहेंगे वहाँ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा और वहीं पर एक भव्य इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभिषेक, ये तो थी मेरी माटी मेरा देश अभियान की बात और ये हमें जानकारी मिली लखनऊ से और अब हम चलेंगे लेह। लेह से क्या समाचार है?
यस, लेह विटनेस द सेकंड एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल वेयर प्रोमिनेंट फिल्म्स फ्रॉम द हिमालयन रीजन वर स्क्रीन्ड। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
During the 5-day festival, screening of popular short and feature films from across the Himalayan region along with photo exhibitions, master classes and workshops for aspiring filmmakers and budding artists of Ladakh took place. LG Ladakh Dr. B.D. Mishra expressed happiness for organizing such program in Ladakh and commended the efforts of the Department of Information. Chief Executive Counselor Tashi Gelson expressed hope for the festival to become grander by the year while providing better opportunities for the film enthusiasts of Ladakh. He emphasized upon the importance of this film festival to showcase Ladakh's rich cultural diversity and traditions through cinematic lens to the outside world. He stressed the need to explore rural locations of Ladakh to promote as film destinations. The Himalayan Film Festival celebrates the best of Indian cinema beyond the mainstream. The festival champions fresh and distinctive points of view projected through the lenses of Himalayan filmmakers. The festival is committed to provide a platform and encourage the growth of filmmakers and recognizing talent in short and documentary filmmaking from the Himalayan states and union territories. For professional and budding filmmakers, DIPR Ladakh is also offering learning competition platforms as part of the festival through events such as Screenwriters Lab, Short Film Competition, Photography Workshop and Master Classes with prominent experts from the Indian film industry. The aim of the festival roots from the idea to connect filmmakers with the public and make filmmakers entrepreneurs. The objective is to promote budding filmmakers and provide an opportunity to develop their talent through learning and networking experiences and connect to the sparsely located Himalayan filmmaking community. For Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
Now it is time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The day of 5th October is the birth anniversary of freedom fighter Baji Raut. He was merely a 12-year-old boy when he fearlessly stood in front of a bunch of British sepoys denying them service. Baji Raut was born in 1926 at the Neelkantpur village in Dhenkanal, Orissa. Son of Hari Raut, Baji was a boatman and volunteer of the Praja Mandal in the Dhenkanal state. He was responsible for the task of keeping vigil on the movement of the state police and troops at the Neelkantpur Ghat on the Brahmini River.
On the night of October 10th in 1938, a number of policemen and soldiers
tried to force him to take them across the river in his boat. The 12-year-old boy refused to do so and told them they were enemies of the people. A soldier struck him on his head with the butt of his gun and his skull was fractured. Despite his serious injuries, he raised an alarm and warned the villagers about the arrival of the soldiers and policemen. He died the same night due to excessive loss of blood. The bravery and patriotism of young Baji Rawat has been immortalized in the poem Boatman by the famous Uriya poet Sachi Rautarai.
On the day of 5th October in 1938, in Kerala, a serious and violent confrontation took place between the British Armed Force and freedom fighters at Kadakkal, a village about 48 kilometers north of Trivandrum. The arrest of some state Congress workers provoked the people very much. The situation of the area was already tense due to the exorbitant toll collected by the agents of the government from the market at Kadakkal, though its intensity was not so hard as in the nearby markets of Kallara, Pangore area. The state Congress workers of Kadakkal exhorted the people not to pay the toll. Also, they obstructed the sale of liquor.
On 29 September, the protesters stormed the police station in the area and the small police party sustained injuries. In view of the alarming strength and fury of the mob, the police temporarily withdrew to Kotarkara. The people had already seized the guns and swords kept in the station.
On 5th October, two platoons of military arrived at the area and suppressed the agitation with an iron hand. 13 houses were set on fire by the police and military. People were mercilessly beaten and tortured. Several cases were framed against the leaders and participants of the movement.
In business news today, the key domestic share indices today ended more than 0.5%. The BSE Sensex closed above the 65,600 mark, while the NSE Nifty ended near 19,500 points. Both indices rose amid mixed global cues. The Sensex finished 406 points up at 65,632, while the Nifty settled 110 points up at 19,546. In the forex market, the rupee closed at 83 rupees and 26 paise against the US dollar.
और अब एशियाई खेलों की अपडेट लेते हैं और एशियाई खेलों की ताजा जानकारी दे रहे हैं मुकेश कुमार।
चीन में हांगचू एशियाई खेलों के 12वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत लिया है। तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। फाइनल में ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश समाधान की टीम ने दक्षिण कोरिया को 230 के मुकाबले 235 अंक से हरा दिया है। भारत का आज का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। उधर महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, वेनम, परनीत कौर और अदिति की तिकड़ी ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
ये लम्हे हमेशा आप याद रखेंगे। किसी भी पोडियम के सबसे बीचों बीच खड़े रहना, अपने गले में गोल्ड मेडल पहनना, अपने सामने देश के तिरंगे को बड़ी शान से सबसे बीचों बीच देखना और फिर देश का राष्ट्रीय गान गाना।
स्क्वाश में मिक्स डबल्स फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मलेशिया की आयफा आजमान और मोहम्मद की जोड़ी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। पुरुष सिंगल्स में भारत के सौरभ घोषाल को रजत पदक मिला। फाइनल में सौरभ को मलेशिया के इन याओ एनजी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रणॉय ने ये मैच 21-16, 21-23, 22-20 से जीता। कुश्ती में मानसी, पूजा और नवीन कांस्य पदक के लिए आज अपनी चुनौती रखेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। भारत अब कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगा। भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। परिक्रमा के लिए मैं मुकेश कुमार।
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा को, जिनकी आज है पुण्यतिथि। भगवती चरण वर्मा हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए, उनकी विशिष्ट कृतियों में गिने जाते हैं। हालांकि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना ही महत्व है। अन्य रचनाओं की बात करें तो चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, सब ही न चावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनको यानी भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से विभूषित किया गया।
Stephen Paul Jobs passed away on this day in 2011. He was an American business magnate, inventor and investor. He was the co-founder, chairman and CEO of Apple, the chairman and majority shareholder of Pixar, a member of the Walt Disney Company's board of directors. Following its acquisition of Pixar and the founder, chairman and CEO of Next, he was a pioneer of the personal computer revolution of the 1970s and 1980s. Along with his early business partner and fellow Apple co-founder, Steve Wozniak.
आज ही अपने समय के जाने माने बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स की पुण्यतिथि है। वो भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी रहे हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बिलियर्ड्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 1958 और 1962 में दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। विलियम विल्सन जोन्स को 1962 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। खास बात यह है अभिषेक के विल्सन जोन्स 12 बार विलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन रहे और 5 बार स्नूकर के नेशनल चैंपियन वो रहे।
केट एलिजाबेथ विंसलेट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1975। शी इज एन इंग्लिश एक्ट्रेस नोन फॉर अ वर्क इन इंडिपेंडेंट फिल्म्स, पर्टिकुलरली पीरियड ड्रामास एंड फॉर अ पोर्ट्रेल्स ऑफ हेडस्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड वीमेन। शी हैज रिसीव्ड न्यूमरस एक्लेड्स। शी वॉज अपॉइंटेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2012। Global stardom followed with a leading role in James Cameron's epic romance Titanic in 1997, which was the highest grossing film at that time. Let's listen in to a song from that movie.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Spaces between us, you have come to show.
आज राष्ट्र वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहा है और आपका जन्म आज के दिन 1524 में हुआ और खास बात यह है गोंडवाना की शासक रानी थी और उन्होंने गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से शादी की और भारत की वीरांगनाओं में जो पहली पंक्ति की वीरांगनाएं हैं उनमें आपकी गिनती होती है।
Yes, and Brian Johnson was born on this day in 1947. He is a British singer and songwriter. In 1980, after the death of Bon Scott, he became the third lead singer of the Australian rock band AC/DC. Johnson was one of the founding members of the rock band Geordi, formed in Newcastle upon Tyne in 1971. Let's listen in to his 1975 hit song, The Jack.
She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.
Yes, and Robert Frederick Zenon Geldof, or Bob Geldof, was born on this day in 1951. He's an Irish singer, songwriter, and political activist. Let's listen into his hit song, The Elephant's Graveyard, and it's from the album Mondo Bongo.
Don't keep her up. आज प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का जन्मदिन है। आज के दिन 1964 में उनका जन्म हुआ। मधुमिता बिष्ट वर्ष 1977 में सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियन बनी और अपने करियर में 8 बार राष्ट्रीय महिला एकल बैडमिंटन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए अतहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।